हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सृष्टि से हुई बातों के बाद अर्णव गुस्से में वहाँ से निकल गया, पर घर में कदम रखते ही उसने खुद को शांत किया, क्योंकि यहाँ धृति थी और कुछ बातें यहाँ भी होनी थीं जिन्हें उसे शांति समझदारी से डील करना था। उसने गहरी गहरी सांसें छोड़ी, अपने हुलिये को दुरुस्त किया, खुद को शांत किया, फिर शीला से धृति के बारे में पूछकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। कमरे में धृति कपड़े बदलकर बेड के क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। आज जो हुआ उन सब के बारे में सोच रही थी। जाने उसके मन में क्या था, पर चेहरे पर सर्द भाव थे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो उसका ध्यान भी उस ओर गया, और नज़रें जैसे ही अंदर आते अर्णव पर पड़ी, उसके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। दे दी आपने आपके भाई के कातिल को सज़ा? धृति के सवाल सुनकर अर्णव एक पल को ठिठका, गहरी निगाहों से धृति के चेहरे का मुआयना किया, फिर इनकार में सर हिला दिया। नहीं, अभी तो बस शुरुआत है, बहुत कुछ करना अभी बाकी है और उसमें कुछ वक्त लगेगा। धृति ने उसके जवाब पर कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, कुछ सोचते हुए सर हिला दिया। उसका ये ठंडा रिएक्शन देखकर अर्णव के माथे पर बल पड़ गए और उसने गहरी नज़रों को उसके चेहरे पर टिकाते हुए सवाल किया, तुम पूछोगी नहीं कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ? अर्णव के इस सवाल ने धृति का ध्यान अपनी ओर खींचा। धृति ने उसे देखा, फिर इनकार में सर हिलाते हुए बिना किसी भाव के बोली, नहीं, अंदाज़ा है मुझे कि आप क्या कर सकते हैं और कुछ जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे भी उन्होंने जो गुनाह किया है उसके लिए जो सज़ा दी जाए वो कम ही है। आप बस इतना बता दें कि मुझे डिवोर्स कब दे रहे हैं, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। डिवोर्स का जिक्र होते ही एक साया सा अर्णव के चेहरे से होकर गुजर गया। पल भर को उसके आगे बढ़ते कदम ठिठके और निगाहें धृति पर ठहरीं, पर अगले ही पल उसने उन पर से निगाहें फेर लीं और चेंजिंग रूम की ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, अभी तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहता कि फिर से तुम्हारी बहन तुम दोनों की एक सी शक्ल होने का फ़ायदा उठाए, इसलिए जब तक उसे उसके गुनाहों की सज़ा नहीं मिल जाती तुम्हें यहीं मेरे पास रहना होगा। यहाँ तुम सुरक्षित हो। आप बहला रहे हैं मुझे, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँ, किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखूंगी, और आपने भी कहा था कि फैशन शो के बाद मुझे डिवोर्स दे देंगे, पर अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं और बहाना बनाकर बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। धृति की आवाज़ में नाराज़गी उभर आई, जिसका एहसास अर्णव को भी हुआ। वो चलते चलते रुक गया, फिर उसकी ओर पलटते हुए बोला, अब तुम इसे तुम्हारे लिए मेरी फ़िक्र कहो, प्यार कहो, परवाह कहो या फिर बहाना, पर होगा वही जो मैंने कहा है। चाहे तुम यहाँ से दूर ही जाने की बात क्यों ना कहो, पर तब भी मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मन हो या ना हो, पर जब तक सृष्टि का खेल खत्म नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रहना होगा मेरे साथ, इसलिए अभी के लिए इस बात को यहीं खत्म करो। अर्णव ने जरा सख्ती के साथ अपना फैसला सुना दिया। धृति उसकी बात सुनकर गुस्से से उसे घूरने लगी, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं फिर से अपनी जिद पर आऊं। धृति ने चेतावनी भरी नज़रों से उसे घूरते हुए गुस्से में दांत किटकिटाए। उसके तेवर बदलते देखकर अर्णव कुछ घबरा गया और बड़े ही प्यार से बोला, धृति कुछ वक्त की बात है, यहाँ रहूँ मेरे साथ, कुछ नहीं करूँगा मैं तुम्हारे साथ और तुम्हें रोकूंगा भी नहीं खुद से दूर जाने से, बस कुछ वक्त की बात है। फिक्र है यार मुझे तुम्हारी, इस वक्त तुम्हारी सो कोल्ड बहन जो पहले से तुमसे चिढ़ती है, खून से खाए बैठी है, वो बस मौके की तलाश में होगी और मैं उसे वो मौका नहीं दे सकता कि अपने गुस्से और बदले की चाह में अंधी होकर मुझे चोट पहुंचाने के लिए वो तुम पर प्रहार करे या तुम्हें किसी भी तरह से कोई भी नुकसान पहुंचाए। तुम भी जानती हो कि अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती और इस वक्त वो अपने गुस्से में कुछ भी कर सकती है, खासकर तुम्हें इस वक्त उससे बहुत खतरा है। मेरी बात को समझो, बस कुछ वक्त की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अर्णव ने बेहद गंभीरता से उसे पूरी स्थिति समझाई। इस बार धृति ने पलटकर कुछ नहीं कहा, मतलब साफ था कि वो अर्णव की बात मान गई थी। अर्णव ने गहरी सांस छोड़ी और चेंजिंग रूम से कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। रात के करीब 12 बज रहे थे। धृति के दिलो दिमाग पर अर्णव और कोमल जी की बातें छाई हुई थीं। कोमल जी का यूं माफ़ी मांगना अप्रत्याशित था। उनकी उस माफ़ी ने उसे वो सब याद दिला दिया था जो उसने उनके अविश्वास के कारण बचपन से सहा था। उसके पापा के जाने के बाद वो माँ के होते हुए अनाथ हो गई थी, क्योंकि उसकी माँ तो उसे एक नज़र देखना तक नहीं चाहती थी और उसने उस छोटी उम्र से जवानी तक उनकी नफरत सही है। हर बार बिना गलती के उसे गलत ठहराने वाली उसकी अपनी माँ रही। उन्होंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। माँ होकर भी कभी उसे जान और समझ न सकी, जबकि अर्णव बिना उसके कुछ कहे ही सब समझ गया, वो भी बस चंद महीनों में। उन्होंने आज माफ़ी तो मांग ली, पर खुद से नहीं। आज अर्णव अगर सच सामने न लाता तो उन्हें कभी अपनी गलतियों का एहसास भी नहीं होता। यही वजह थी जो शायद उसके दिल में टीस बनकर चुभ रही थी। इतना आसान नहीं होता किसी को माफ़ करना, और ये बहुत अच्छे से जानती थी। तभी तो चाहकर भी अपनी माँ को आज माफ़ी नहीं दे सकी थी। पर माफ़ी तो अर्णव को भी नहीं दे सकी थी वो, कैसे देती? उसने जो कुछ किया उसे भी नहीं भुला पा रही थी। फिर और कुछ भी था जो उसे अर्णव की ओर बढ़ने से रोक रहा था? आज अर्णव ने उसके लिए जो किया उसके बाद वो एहसान मंद थी उसकी। मन में कृतज्ञता के भाव उमड़ रहे थे। दिल के किसी कोने में जहाँ उसकी अच्छाइयों को बसाया था, वहाँ आज की याद भी बस गई थी, और उसके लिए मन में थोड़ी इज्जत भी बढ़ चुकी थी। पर सबके सामने रिश्ते को अनाउंस करना उसे नागवार गुजरा था। वो तो जल्दी से जल्दी यहाँ और अर्णव से बहुत दूर चली जाना चाहती थी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे अर्णव उसके आसपास एक चक्रव्यूह बना रहा है जिससे बाहर निकलने में वो असमर्थ थी। उफ, दिमाग में ख्यालों का तूफान उठ रहा था और सर बुरी तरह दुखने लगा था। उसने अपना सर पकड़ लिया और नजरें बेड के दूसरी तरफ की ओर घुमाई तो अर्णव सुकून की नींद में सोया हुआ था। आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ना, ताकि मैं आपसे दूर ना जा सकूं? बहुत मजा आ रहा है ना आपको मुझे परेशान करके? देखिए मुझे भसाकर कैसे सुकून से सोए हैं। पर आपकी ये सब कोशिशें किसी काम नहीं आएंगी। आप कुछ भी करके मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। मुझे जबरदस्ती इस रिश्ते को निभाने पर मजबूर नहीं कर सकते। मैं चली जाऊंगी यहाँ से बहुत जल्द। अपने मजबूत इरादों और दृढ़ निश्चय के साथ वो अपनी जगह लेट गई और सीलिंग को घूरने लगी। अगली सुबह दरवाजे पर बार बार होती दस्तक से अर्णव की नींद खुली और साथ ही धृति की भी नींद खराब हो गई। पर रात को देर से नींद आने के कारण उसकी नींद पूरी तरह से खुली नहीं थी। वो आधी नींद में ही उठकर बैठ गई और अध खुली उनींदी आंखों से अलसाई हुई सी गेट की ओर देखने लगी, जबकि अर्णव जल्दी से उठकर गेट की ओर बढ़ा था। और धृति पर नींद इस कदर हावी थी कि वो अर्णव भी धुंधला धुंधला ही नजर आ रहा था। अर्णव ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने शीला खड़ी थी और चेहरे पर 12 बजे थे, मानो किसी बात से बहुत परेशान हो। क्या हुआ शीला, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो और इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अर्णव के सवाल पूछने की देर थी कि शीला परेशान सी बोल पड़ी, सर नीचे बड़े साहब बड़ी मैडम सबके साथ आए हैं और आपसे और मैडम से मिलना चाहते हैं। शीला की बात सुनकर अर्णव बुरी तरह चौंक गया। फटी आँखों से उसने शीला को देखा और हैरानी से सवाल किया, दादा दादी आए हैं सबके साथ?
यस सर, आप मैडम के साथ जल्दी से नीचे आ जाइए, वो काफी नाराज लग रहे हैं। शीला ने उसे आगाह भी कर दिया। अर्णव ने सहमति में सर हिलाया और उसे नीचे सबका ध्यान रखने को बोलकर जैसे ही दरवाज़ा बंद करके मुड़ा, उसकी नज़र बेड के क्राउन से टेक लगाए बैठे बैठे सोती धृति पर पड़ी। दुनिया जहाँ की मासूमियत खुद में समेटे वो अर्णव की धड़कनों को अनजाने तौर पर बढ़ा गई थी, जिससे बेखबर खुद सुकून की नींद में गुम थी। अर्णव का दिल तो किया पल भर ठहर उसे प्यार से तकता रहे, पर अभी इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसलिए उसने अपने दिल को समझाया और धृति की ओर कदम बढ़ा दिए। वो धृति के पास आकर बैठ गया और उसके चेहरे पर बिखरी अटखेलियां करती लटों को अपनी उंगलियों से समेटते हुए कान के पीछे खोंस दिया। उसके लम्स को महसूस करते हुए धृति नींद में भी बेचैन हो गई, कसमसाई फिर चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया पर आंखें नहीं खोलीं। शायद वाकई बहुत नींद आ रही थी उसे। अर्णव उसकी इस अदा पर मुस्कुराया, फिर प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए बड़ी ही मोहब्बत से उसे पुकारा, धृति वेक अप। धृति के कानों में उसके शब्द पड़े तो उसने अपनी अलसाई पलकों को हल्के से उठाया और नींद से मदहोश गुलाबी अधखुली आंखों से उसे तकने लगी। पर अगले ही पल उसकी पलकें फिर मुंधने लगी थीं। ये देखकर अर्णव ने उसे हल्के से झकझोड़ते हुए कहा, धृति वेक अप, बाद में सो लेना, अभी जल्दी से उठो और जाकर मुंह धोकर आओ। अब धृति की नींद कुछ खुली, पर अब भी नींद का नशा उसके सर पर सवार था। उसने बच्चों जैसे मुंह बिचकाया और मासूमियत बिखेरते हुए बोली, क्यों अब सुबह सुबह कौन सा तूफान आ गया है, मुझे नींद आ रही है। धृति मेरी फैमिली आ गई है नीचे, शायद उन तक भी हमारी शादी की खबर पहुंच गई है, इसलिए बिना बताए आ गए और अपनी बहू से मिलना चाहते हैं, जल्दी उठो और जाकर फ्रेश हो जाओ। अर्णव ने अब जरा हड़बड़ी में जवाब दिया। उसके चेहरे पर पहली दफा घबराहट के भाव मौजूद थे। फैमिली सुनकर धृति के भी होश उड़ गए। सारी नींद पल भर में गायब हो गई। फैमिली, धृति ने चौंकते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे हैरान परेशान निगाहों से देखा। टू बी कंटिन्यूड।